ಯಸುದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಸುದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪೀ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪೀ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಜಯ ರಾಧಾ ರಸ ಬಿಹಾರಿ ರಾಧಾ ರಸ ಬಿಹಾರಿ ರಾಧೆ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಾನ್ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಾನ್ ನಿತಾಯಿ ಗೌರ ಹರಿಬೋಲ್ 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 ಜಯಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಯಚರಣಾರ್ವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವಿರಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಇಸ್ಕನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವಿದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ
అనంతకుటి వైష్ణవ భక్త బృందకి, నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకురుకి, ప్రేమశకహో శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌరవభక్త బృందకి, శ్రీ 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 రాధాకృష్ణ గోప గోపినాథ్ శ్రీ రాధాకుండ శ్యామకుండ గిరిరాజ్ గోవర్ధన్జీ మహారాజ్కి జయ శ్రీ శ్రీ బ్రజ బృందావన ధామకి, శ్రీ మథురాధామకి, శ్రీ నవదీప్ మాయాపురధామకి, శ్రీ జగన్నాథ్ క్షేత్ర పురిధామకి, శ్రీ ద్వారికాధామకి, శ్రీ బద్రికాధామకి, శ్రీ అయోధ్యాధామకి, గంగాదేవి జమునాదేవికి, బృందాదేవి తులసి మహారాణికి, జుగధర్మ హరినామ సంకీర్తనకి, గ్రంథరాశిమద్ భాగవత మహాపురాణికి, సమవేత భక్త బృందకి, సమవేత భక్త బృందకి నితాయ గౌరహరి ప్రేమానందే. తో ఆజ్ భీ ఈ తృతీయ దివస్ హే. ఆప్ లోక్ నే జో శ్రద్ధాలు భక్త్ యహాం పధారే, మాతృబృంద భక్తవృంద సభీకి భీ విశేష స్వాగత్ హే. సౌండ్ క్యూ ఆతా, సౌండ్ ఆతా నా? తో హమ్ దో దిన్ సే ఈ చర్చా కర్ రహే థే कि किस प्रकार भगवान की प्रकट होने का पहले कैसे दशा थी, उनके जन्म स्थान का, उनके माता पिता के, स्वजन परिजनों के किस प्रकार परिवेश था. कल इस चर्चा पर हम कहाँ तक गए थे भूल गए सब? हाँ, किसकी याद नहीं शायद? कंस ने, आपने बहन को बद्ध करना छोड़ करके घर में वापस आ चुका है और ये नवदंपति उसी रथ से जाकर अपने भवन में पहुंचे हुए हैं. यही था ना, विदाई उत्सव हो चुका है कंप्लीट. इस प्रकार से हुआ, शुरुआत हुआ था कितने सुंदर मंगल प्रथा से, और रास्ता से इतने गड़बड़ हो गया कि इस प्रकार से विदाई उत्सव पूरा हुआ. और युवराज कंस घर में आए, पिताजी के साथ थोड़ा बोलचाल हो गया, झगड़ा हो गया दोनों से, दोनों को ऐसे ही बोल बाल करके कंस आकर के अपना भवन में पहुंचा. पहुंचते ही सोच में पड़ा था क्या अभी किया जाए, तो इतने में उनके दो पत्नी अस्ति और प्राप्ति पति के पास आए. उनके इस प्रकार मुखमंडल को देख करके उनको सांत्वना देने लगे. तो कंस ने उनको बताया सारे घटना क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे मेरा सबसे लाडली, सबसे स्नेह जिसको मैं करता था, सबसे छोटी बहन, अब आकाशवाणी देवता लोक ने कहे कि उन्हीं का अष्टम पुत्र मेरा काल होगा. और उसके बाद ये घटना सुन करके मैं उसको तो बध करने के लिए उद्यत हो गया था, तो उनके रानी तो फिर छोड़ कैसे दिए, मारे नहीं उनको, सबके जड़ तो हुई है, मारे नहीं उनको ना, नहीं मारे नहीं. ये सब बताया कि वसुदेव जी ने कैसे समझाया, कैसे की कंडीशन हुआ, अग्रीमेंट साइन हो गया. तो उनके पत्नी को हम मार देते तो अच्छा होता, लेकिन बड़े कलंक होता, क्रिटिसाइज करते थे लोग, अच्छे किया आपने, इतने प्रशंसित पुरुष हो, सारे समाज में आपने इतने बड़ा नाम है, इसे कोई बदनामी और बाकी था उनका होने का, अब आप ऐसा काम नहीं किया, अच्छा किया, लेकिन कुछ व्यवस्था तो करना चाहिए ना. व्यवस्था तो हो चुका है, हर संतान मेरा पास वसुदेव जी ने लाएंगे और मैं उनको मार सकता हूँ, देवकी जी से तो कोई मेरा भय नहीं है. चर्चा करके कंस ने अपने दोनों रानियों को सावधान की कि आप लोग का भी विशेष रोल है उसमें, बताइए, हम तो आपके दासी हैं, क्या करें। आप जाइए और वसुदेव के भवन में, वो अभी पहुंचे होंगे, बहुत चिंता में पड़े होंगे, मरते मरते बच करके गई और उनको जा करके समझाया ना, क्या आपने और भी उनको स्नेह करते हैं ना क्या? नहीं नहीं अरे पगली, आप नहीं समझते हैं, उनके ऊपर पूरा ध्यान नहीं रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वसुदेव डर के मारे देवकी के लेकर के मथुरा से बाहर चले तो भाग गए तो गया, तो फिर कौन ढूंढेगा उनको कहाँ जा करके? अब तो हैं मथुरा में है और अपने भवन में है, उनको नजर रखेंगे कब कैसा होता है, पूरे गतिविधि कौन मिलने आता है क्या करता है पूरे नजरबंदी में रखेंगे। और तो कोई नहीं, विशेष करके देवकी को ध्यान में रखना है, उनके संतान कब होगा कैसे होगा, और सारे सूचना मुझे प्राप्त होना चाहिए, अंतपुर का सारे खबर मुझे होना चाहिए, कैसे कैसे से वातावरण रहता है। तो पति की इतने बुद्धि को देख करके दोनों पत्नियों ने बड़े प्रशंसा किए कंस की, और तुरंत तैयार हो गए। और तभी से दूसरे दिन से वो अपने, राजा रानी है उनको तो जाने आने में कोई अपना गाड़ी सेपरेट होगा, उनका सेपरेट कार में जाते थे, दस दासियां भी जाती थे, परिचारिका भी जाते थे, जा करके वहां सेवा करके ऐसे कपट अभिनय करते थे, बातचीत करते थे वसुदेव के यहाँ, कि किसी को लगता था कि ये सचमुच ये कंस के सपोर्टर नहीं है, वो कितने प्रेम है उनके अंदर, हमारे सपोर्टर है, कंस को पसंद नहीं करते। ऐसे बातचीत करना, सेवा में रहना, प्राय अधिकांश समय दिन में वही गुजार रहे थे, वो सारे रिपोर्ट लाकर देते थे कंस को, कौन सा कमरा में रहते हैं, कैसे क्या खान पान, सारे किससे मिलते हैं क्या, सारे खबर देता था। इस प्रकार से पूरे सतर्क होकर के कंस ने वसुदेव देवकी के ऊपर तो आपने स्वयं दोनों पत्नियों की लगा दी ड्यूटी में, लेकिन फिर इतने भी उनको मन नहीं माना, आपने राजभवन में आकर के ऑफिस में आकर के स्पेशल मीटिंग बुलाया, जो उनके फॉलोअर्स थे युवराज जो बोल रहे थे उनको, सैन्य विभाग में बहुत लोग उनके थे, उनको बुला करके उनसे विशेष मंत्रणा किया। तो लोग ने बोले, युवराज हमको सुना तो पड़ा, खबर बाद में मिला, अगर हम यहाँ होते में देख लेते, आपके ऊपर लोग कुछ ऐसे आक्रोश कर रहे थे, हम उनको देख लेते लेकिन हम थे नहीं, बाद में खबर मिला हमको। और इस प्रकार योजना करके बड़े सतर्क रहता था कि किसी भी समय कुछ अघटन हो सकता है, क्योंकि उस दिन उसका नजर पड़ गया था पूरे मथुरापुरी में अनेक जादव वृद्ध जद कुमार सब उनके विरोधी हो उठते थे, अस्त्र उठाने तक वो नजर पड़ गया था उनके ऊपर, तो इसलिए वो सतर्क होना चाहता था। तो इस प्रकार सभी को सतर्क वाणी दे करके, विचार विमर्श करके, और उनने सम्मानो दिन गिनता था कि कब देवकी का संतान हो और मैं उसको बध करूं। इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे इसके साथ साथ राज्य के जो भी और डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उसको भी उन्होंने अपने अंडर में लेने के लिए प्रयास कर रहा था। कभी कुछ कुछ बड़े बड़े अफसर जो थे, बहुत उच्च पदाधिकारी लोग थे, कई वर्षों से मथुरा से अधिकारी हैं मथुरा राजभवन में, महाराज उग्रसेन के आज्ञानुवर्ती थे, आज्ञाकारी थे ही उनके सेवक, तो उनको नाम की कोई गलती से, कोई गलती नहीं थी, ऐसे ही उनसे पदच्युत किया गया, उनको निकाल दिया गया उन्हें पोस्ट से, युवराज ने उनको निकाल दिया। अब क्यों कैफत क्यों नहीं, हम पसंद नहीं करते, गेट आउट। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदाधिकारियों को पदच्युत किया गया, चेंज किया गया, उन लोग ने माने नहीं, वो समझते नहीं, तो जाकर के महाराज से कंप्लेन की। महाराज भी मानो उस दिन से उदास हो गए थे, जिस दिन उनका बोलचाल हो गया ना, गेट पर भेंट हो गया था, कल सुने थे ना कैसे बातचीत हो गया, उस दिन से महाराज उग्रसेन भी बड़े उदास हो गए थे अपने पुत्र के प्रति, बड़े चिंता में थे क्या करूं ये दुष्ट को, बातचीत नहीं हो रहा था। कई महीने तक दोनों बाप बेटा का बात ही नहीं हुआ, वो उनको मिलने गए, उनको मिलते नहीं थे, कोई बात नहीं करते थे। कभी राजसभा बैठते थे तो अगर महाराज उग्रसेन बैठते हैं, कंस नहीं जाता था, एब्सेंट रहता था, वो नहीं जाता था, और कंस कभी आता था तो महाराज उठ के चले जाते थे, ये स्थिति आ चुका था। और जो उनके सपोर्टर, जो बड़े बड़े ऑफिसर, जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, कैसे भी कैसे पॉलिटिक्स करके उनको निकालता था, दोष दे करके, कले बले कौशले, कोई बल लगा करके, कोई छल करके, किसी प्रकार से निकालता था। वो लोग बोलते थे, अरे हमारा क्या दोष है, युवराज ऐसे क्यों करते हैं, कहेंगे किसको कहेंगे, महाराज के पास आकर कंप्लेन करते हैं, महाराज खबर भेजते हैं, क्यों ना ऐसे ऐसे कुछ भी कारण बता देता, स्वयं नहीं जाता था, ये मेरा डिसाइड है, डिसीजन है। तो महाराज के पास कोई उपाय नहीं होता था, तो उनको बोलते ठीक है हमारे पास रही, आपको वेतन तो हम देंगे, वो सेवा से निकाल दिया, हमारे सेवा में रही। तो महाराज अपने अंगरखे का संख्या वृद्धि करने लगे, उनका पास यथेष्ट सेवक थे, लेकिन क्या करें, जो अच्छे अच्छे सेवक थे, आज्ञाकारी सेवक थे, बड़े ईमानदार थे, ये सबको कंसर्न निकाल रहे, क्यों जानते कि ईमानदार उनकी तरफ से मेरे वो अपना योजना बनाता था पूरे राज्य घर में, तो उनको निकाल दे रहा था एक एक करके, और सब राजा के पास पहुंचे, राजा महाराज अपने पास रखते थे सबको। कंस यहां तक एक बार तो नोटिस भेजा महाराज के पास इनडायरेक्टली, महाराज आप एक अयोग्य लोगों की भीड़ अपने पास क्यों इकट्ठा करते हैं, ये सब कोई बेकार लोग हैं, अरे जो अच्छे अच्छे इतने दिन से सेवा किए हैं ईमानदारी से, वो उनको नहीं चाहता, उनके जगह पर आपने असुर लोगों को सो बैठा रहा है, उनको महाराज को तो पसंद नहीं था, नापसंद होकर के प्रतिवाद करना तो चाहते थे, लेकिन प्रतिवाद करने का कोई स्थिति ही नहीं था उनका, क्योंकि लगभग सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट हेड सब उनके तरफ से हो चुके थे, और तो और उनके 9 पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे राक्षस कंस, उनके जो और 8 और पुत्र थे, गड़बड़ी की बात है ये कि वो सारे 8 अपने पिता को नहीं चाहते थे, भाई के सपोर्टर थे, सारे कंस के अंदर थे, उनको बिल्कुल सपोर्ट करते थे। आप महाराज अकेले पड़ गए थे, जो भी कुछ ईमानदार आज्ञाकारी अच्छे सेवक थे उनके साथ सलाह करते थे, उनको तो सब कंस ने एक एक करके निकाल रहा है। तो इस प्रकार पूरे देश के परिचालना में भी राज्य में बहुत बड़ी तनाव चल रहा था, उसका भी विचार पूरे राज्य में इफेक्ट पड़ रहा था, ऐसा हुआ उनको निकाल दिया गया, उनको निकाल दिया, क्या हुआ कैसे हुआ क्या केस करेंगे, महाराज ने उनको अपने शरण में लिए रखे। तो इस प्रकार पिता पुत्र का वही मनुष्य भी बढ़ते जा रहा था। तो धीरे धीरे भागवत में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये समय भी आया, अथ काल अपावृते देवकी सर्वदेवता, अथ इस प्रकार काल अपावृते समय आया, देवकी जो सर्वदेवता, सुखदेव गोस्वामी देवकी को ये विशेषण देते हैं, देवकी माता सर्वदेवता, क्यों सर्वदेवता, क्योंकि अभी कृष्ण के जननी होने वाले हैं, भावी जननी भगवान के, तो भगवान कृष्ण तो अभी परिपूर्णतम अवतार में आएंगे, तो उनमें सारे देवता सारे अंश सब कुछ उनके साथ होगा, तो इसलिए उनको भी सर्वदेवता देवी को माना गया। तो काल के अनुसार देवकी माता पुत्रान प्रसुषुवे चाष्टो कन्यांच बानुवत्सरम, अनुवत्सरम 8 पुत्र और 1 कन्या को प्रसव की, उसमें से ही ध्वनित हो रहा है कि जो कन्या, आठ पुत्र तो उसे पता है, कन्या के बारे में कन्या थी सुभद्रा, बाद में होगी, तो पहले से भविष्यवाणी कर दी सुखदेव गोस्वामी। इस प्रकार समय के अनुसार माता देवकी जो सर्वदेवता थे, सारे देवताओं के जननी सदृश थे, उन्होंने समय पर एक एक करके आठ संतान और एक पुत्री प्रसव की। और वो किस प्रकार, जब प्रथम गर्भ अपने महल में थे, वसुदेव जी ने अपने अंतपुर में अपने कक्ष में थी माता देवकी ने, और उनके जितने भी क्या कहते हैं उनके को वाइफ्स को सपत्नी, जितने सपत्नी थे लगभग आधे तो उनके बड़े बहनी थे, सगे बहन थे, तो सब उनको सेवा में थे, समझाते थे। अब जब कंस को मैसेज मिला, सबसे पहले उनके छोटी रानी प्राप्ति ने उनको मैसेज दिया महाराज कंस को कि माता देवकी की दूसरे महीना चल रहा है। तो कंस तो जाता नहीं था कभी, पूरा खबर लेता था रिपोर्ट, तो कंस ने बोला कि बिल्कुल और ध्यान रखो, और सेविकाएं लगा दी जाए, डिलीवरी वार्ड के नर्स को अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, और सब सारे व्यवस्था ठीक ठीक हो जाए, जो प्रकार में खान पान की व्यवस्था हो। वो बोलते इसे खान पान की व्यवस्था ना, मुझे नहीं ये चाहिए कि किस प्रकार के बीमार हो, किस प्रकार को नहीं, नहीं, वो बिल्कुल सबल सुस्थ रहे, यथाशीघ्र उनके संतान हो, मैं उसको मारूं, इसके लिए सब व्यवस्था कर रहा है। तो इसलिए पूरी व्यवस्था की जाए, नर्स डॉक्टर जो भी सब उपचार सब किया जाए। तो उनके दोनों पत्नियों के, दोनों रानियों के अध्यक्षता में कई सेवक सेविका नर्स आदि सब अपॉइंटमेंट हुए थे, पूरी व्यवस्था चल रहा था। और माता देवकी को तो कोई छलना नहीं था उनके पास में, उनको तो कभी भान ही नहीं हुआ कि ये मेरे जो क्या होंगे कंस की पत्नी, उनके क्या रिलेशन होंगे, भाई नहीं भाभी, ये दोनों मेरे भाभी, मेरे प्रति कितने प्रेम करते हैं, सही में मेरा हितैषी है, मेरा पूरा हितैषी है। तो उनको बिल्कुल सांत्वना देते थे उनके पास रह करके, देखो ये आपके पहला अवसर है, प्रथम अवसर पर तो नारी के लिए बहुत बड़े कष्टकर होता है, तो बिल्कुल काम दाम नहीं करो, ऐसे मत करो, ऐसे बैठ रहो, ये करो वो करो। और उनको कभी पूजा वूजा करने के लिए इच्छा होता था, कोई कथा सुनने के, नहीं नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब मत करो राक्षस वृत्ति हो, जैसे ही संतना दे ऐसे करते थे, आकर के रिपोर्ट देते थे डेली कंस को। कंस बोलता था अरे पूछो कुछ, उनको अच्छे वस्तु खाने के लिए चाहिए, क्या चाहिए उनको ठीक से दे। तो बोले हम तो हर पूछते, कोई आवश्यकता नहीं फील करती, देवकी माता बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो चाहिए, नहीं मुझे नींद आती है बस, बहुत आलस्य आता है, कोई कुछ आवश्यकता नहीं चाहती। तो कंस ने हंस करके कहा हां मैं तो देखा हूं उनको, उनके छोटीपन से सही सब सही उन्होंने इस प्रकार किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं करती थी, किसी को चाह नहीं करती थी। हां अवश्य कोई देव मंदिर के पूजा, कोई व्रत इसके लिए करने के लिए तैयार हो जाती थी, कोई ब्राह्मण अतिथि देवता ऋषि कोई आए उनके सेवा के लिए सबसे पहले हाजिर होती थी। अभी भी तो वही कर रही है, अभी भी व्रत पूजा वही पाठ वही तो कर रही है, और क्या। तो ऐसे अंतर्वती नारी का तो खाना अरुचि हो जाता है, और वो व्रत करते ही हैं वो लोग, तो इस प्रकार उनके पूरा ख्याल रखते थे दोनों रानी। कभी कभी बैठ करके बात करते थे उनके पास में, बोले देखो देवकी वो तो आपको अभी भी स्नेह करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव है कभी गुस्सा हो जाता है तो किसको नहीं मानते, सब भूल जाते हैं रिलेशन, तो गुस्सा में आपके प्रति कुछ ऐसे व्यवहार कर दिए होंगे, लेकिन बहुत लज्जित होते हो, उनका मन में बड़ा ग्लानी है, पश्चाताप करते हैं। हम उनको कई बार बोले भी कि चलिए जब किसी मिले, लेकिन बहुत शर्म मानते हो ना, किस मुख से जाऊं, उसको मारने के लिए अस्त्र उठाया था, गला पकड़ रखा था, इसीलिए शर्म के कारण नहीं आते हैं, लेकिन हमेशा हमको भेजते हैं आपकी सेवा के लिए। बिना छलना में माता देवकी भी बोल पड़ी, मैं मानती हूं भैया कितने मुझे स्नेह करते हैं, क्या करूं, उनका क्या दोष है, दैव के खिलौना बन गए मेरे भैया ने। विधि ऐसा है, कुसंग में पढ़ करके इस प्रकार उनके आदत हो गया, नहीं तो मैं जानता हूं कितने अच्छे हैं, मुझसे कितने स्नेह करते हैं। इस प्रकार से कपट व्यवहार करके दिन पर दिन सतर्क दृष्टि रखते थे, और ये समय धीरे धीरे आने लगा। सारे जो प्रसूति कक्ष में वसुदेव जी के जितने भी पत्नी लगभग सभी पहुंचते थे, और मन में आनंद उत्साह होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं आनंदित होते हैं। सबका मुख में यही एक ही वाक्य है, हाय बिचारे देवकी कितने दुखी है, कहे को आनंद करें जिसको रहना ही नहीं है, उनके लिए उत्सव क्या है, वो आएगा और मरेगा, इसी के लिए तो व्यवस्था है। अभी से इसे व्यवस्था जो किया जा रहा है कि जल्दी आए और मरे, तो उनके लिए उत्सव क्या करे, आनंद क्या करे, तो की कोई व्यवस्था भी नहीं करते थे। तो जब समय आया निकट, तो कंस ने और कड़ी व्यवस्था कर दी। उस रात को तो दोनों रानी ने अपने राजभवन वापस नहीं गई, वहीं रही, और समय के अनुसार एक पुत्र संतान हुआ। तो उन दिनों कंस ने आदेश किया था कि जितने सतर्क दृष्टि देवकी के ऊपर रखो, इतने से ज्यादा वसुदेव के ऊपर रखो, क्या रखें, ना उनसे कौन मिलने आ रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कब, ये सारे मुझे बताते रहो। तो उन्होंने उनको खबर भी देते थे कि वसुदेव तो स्वयं किससे मिलना नहीं चाहते, हमेशा हताश रहते हैं, अपने आप में कुछ खोए हुए रहते हैं, उदास रहते हैं हमेशा, ना कोई मिले ना, हाँ कुछ मिलने तो आते हैं उनसे, कई बड़े बड़े लोग, कई जादव कुमार तो मिलने आते हैं, यहां तक आकर कहते हैं कि कुमार हमको बताइए, हम अपने संतान को बचाने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हैं, क्या सहाय कर पाए बताइए, न तो वसुदेव क्या कहते हैं उनके लिए, ना उनको कुछ नहीं कहते, निरुच्छा करते उनको, बोले नहीं जो ईश्वर की इच्छा वही होगा, आप अपना रहिए, ऐसा कोई आपके सहायता नहीं चाहिए। अच्छा नहीं बोलते ना, कौन कौन आ रहे थे उनके नाम नोट करके मुझे बताओ। और वसुदेव जी ने कोई भी व्यक्ति, बड़े व्यक्ति व्यापारी वर्ग से, कोई अधिकारी वर्ग से उनको मिलने आते थे, वसुदेव जी उनको अपने से कोई मिलना नहीं चाहते थे, कोई प्रश्न पूछे जथा संक्षेप में उत्तर दे करके चुप बैठ जाते थे। अच्छा नहीं, उनमें तो कोई उत्साह नहीं, उदास हमेशा रहते थे। आगे चल करके कुमार वसुदेव के भवन में कितने पुत्र होंगे, राजपुत्र कहा जाएंगे, राजपुत्र के नाते उनके जन्मोत्सव मनाया जाएगा, राजकुमार का आगमन कर वहां जन्मोत्सव, लेकिन आज उनके घर में सर्वप्रथम पुत्र होने जा रहा है। फर्स्ट उनके 18 पत्नी थे, लेकिन किसी का भी संतान नहीं हुआ था, सबसे फास्ट सबसे छोटी रानी से, देवकी से उनके संतान हुआ, और सबसे पहली संतान मथुरा के राजकुमार, उसके लिए कितने बड़े उत्सव होना चाहता महोत्सव, कुछ नहीं, कोई दरिद्र व्यक्ति के घर भी कोई संतान पैदा होता है, कोई फटा थाली भी बजा लेता है, कहीं भी शब्द नहीं हुआ, कोई मंगल वाद्य नहीं, कोई गान नहीं, कुछ नहीं। कंस के कुछ दासी थे, वो कुछ करना चाहते थे लेकिन उसको भी डांट दिया गया, चुप, उसके लिए क्या। तो आकर के वसुदेव जी बैठे थे पत्थर की तरह, एक दासी दौड़ करके आई, आकर के खबर दी कि कुमार आपके पुत्र हुआ है, ये शुभ खबर। वसुदेव जी ने कुछ उल्लास नहीं दिखाए, कुछ खुश नहीं हुए, केवल इतना ही कहे कि जल्दी से नाल छेदन करो। क्यों? मुझे इसको लेकर जाना है। अब विधि के अनुसार तो नाल छेदन से पहले नंदी मुखी श्राद्ध, देव पूजन, गुरु पूजन आदि होना चाहिए था। अब आचार्य को खबर तक नहीं दिया गया, जल्दी से वसुदेव जी की आज्ञा से नर्स लोग थे जो उपचार कर डाले, और वसुदेव जी ने जंत्र चालित उठ करके चले, सीधा प्रसूति कक्ष में गए और जा करके हाथ बढ़ा रहे हैं। और सारे सेविका वर्ग सब देख रहे हैं कि अभी अभी जन्म हुआ नवजात शिशु, कोई पूजा थोड़े कोई कुछ करना है, आप जन्म हुआ तो तुरंत उसको लेकर जाना चाहते कंस को देने के लिए, सौंपने के लिए। वसुदेव सत्य प्रतिज्ञा थे, जाकर के तुरंत पहुंच गए और हाथ फैलाने लगे। माता देवकी देखी कि उनके पति आ चुके हैं उनके पास, और पुत्र को देखना, कुछ खुश होना तो बात नहीं, बड़े गंभीर मुद्रा में हाथ बढ़ाए उसको लेने के लिए। उनको देखते ही माता देवकी बोली उठी, स्वामी क्या उनको कोई बचाने का उपाय नहीं है? उनको प्राण रक्षा नहीं किया जा सकता? इस प्रकार के एक आतुर भरी फुकार, प्राण भिक्षा के लिए आर्त नेत्र, इसी मुद्रा में देवकी ने अपने पति की ओर से देख रही थी। वसुदेव देखे कि अगर मैं ज्यादा समय आ रहा हूं तो मैं प्रतिज्ञा पालन में शायद असमर्थ हो जाऊं, तो निष्ठुर के भांति स्वयं आगे झुक करके उनसे गोद से सद्यजात शिशु को उठा लिए, देवकी देने से पहले स्वयं उठा लिए, उठा करके अपने गोद से लेकर के जंत्र चालित भांति चल पड़े। सभी ठिठक कर देख रहे हैं, कैसा पिता है यार, पहली संतान मरवाने के लिए इतनी उतावली इसीलिए जा रहा है, चल पड़े। और जैसे निकले प्रसूति भवन से अपने संतान को लेकर के, सारे उनके ही पत्नी थे सारे, और भी सब पूरे अंतपुरी क्रंदन की शोर से भर गई, सब रो उठे। ये रोना लेकिन उनको पसंद नहीं आया, किनको? कंस के जो दो रानी थे, बोली ये क्या रो रहे हैं, समझाने लगे लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने तुरंत अपने गाड़ी में बैठ करके वापस चले गए राजभवन में। देवकी तो मानो जैसे उनके गोद से संतान को लिया गया, चित्कार करके उठी और मूर्छित हो गई। सभी रोते रहे, यही एक ही आशा था, आपस में रोते रोते बोल रहे थे कि ये तो कंस का काल नहीं है, उनको क्यों मारेगा, ये तो उनका कोई शत्रु नहीं है, शायद कंस इसको छोड़ देगा, शायद कंस छोड़ देगा। वसुदेव जी तो अपने प्रतिज्ञा पालन करने के लिए चले जा रहे हैं, लेकिन कंस उसको सही में क्या मार देगा, वो तो उसका शत्रु नहीं है। यही एक आश्वासन वाणी, यही एक आशंका करके आपने रोना को मीटर डाउन किए, थोड़ा कम किए, हो ना हो कंस उनको छोड़ दे, क्यों ये तो उनका शत्रु नहीं है। इसी आशा को लेकर के आपने आपको शाश्वत सांत्वना दिए। और यहाँ जब उन्होंने मथुरा के राज रास्ता पर बिल्कुल लेते चले जा रहे हैं, मथुरा के नागरिक देखे, सब बड़े बूढ़े बालक सब ने बोला आहा हा, धन्य है वसुदेव, धन्य है आपके सत्य की निष्ठा। ऐसा कभी हो सकता कोई व्यक्ति, ऐसे समर्थवान पिता होते हुए भी आपने सबसे प्रथम संतान को, सभी जानते हैं क्या होने वाला है, और काल के गल में सौंपने के लिए स्वयं उठाकर चल पड़ता है। हाय हाय हाय, कितनी सत्यनिष्ठा है तुम्हारा। सब प्रशंसा करने लगे, कई लोग बधाई देने के लिए उनको सराहना करने के लिए आ पड़े, लेकिन वसुदेव आज तो काट पुतली के भांति चल रहे थे, ना तो किसी का कोई सुन रहे थे, ना किसी को कोई कुछ देख रहे थे। आपने धीर पदक्षेप से बढ़ते आगे चले जा रहे थे, कई लोग उनके साथ में जाते थे, कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन किसी के ओर दृष्टि भी नहीं, कान में नहीं, वो तो बस चलते जा रहे हैं। जब वसुदेव के अंतपुर में संतान पैदा हुआ था, तुरंत मैसेज मिल गया था कंस को कि अभी हुआ इसी समय में और ये घटना हो रहा है, पूरा मैसेज हूबहू मिलता था उनको, हर घड़ी घड़ी में चर जाकर मैसेज देते थे उनको। कंस ने ये आशा कर रहा था, उनका मन में विचार था, ठीक है, उनको पता चला कि डिलीवरी होने वाला है आज रात को या कल, क्योंकि इमीडिएट मैसेज मिलता था सब। वो सोचता था कि ठीक है, वसुदेव जी ने मुझे वचन दिए हैं, उनका अगर संतान होगा तो शायद मुझे वो खबर भेजेंगे, फोन करेंगे या जो करेंगे खबर भेजेंगे कि युवराज आपके भागिनेय हुआ है, और आप अगर आज्ञा करें तो आप आएंगे यहां, या मैं लेकर आऊं, या उनके सठी पूजन आदि करके एक हफ्ता के बाद ले आऊं, आप जैसे आज्ञा करें। और अगर मुझे ऐसा खबर भेजेगा, प्रार्थना करेगा, मैं बड़े उदार बनकर के उसको स्वीकृति दे दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, करके आओ, एक हफ्ता दस दिन के बाद करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तैयार था स्वीकार करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए, उनको हफ्ता दस दिन टाइम देने के लिए तैयार भी था। लेकिन दूसरा मैसेज आया कि युवराज कुमार वसुदेव तो तुरंत ही वसुदेव गृह से अपने सद्यजात शिशु को लेकर के चल पड़े आपके पास। अच्छा, वो कभी सोच भी नहीं सकता था इसे वसुदेव जी ने आ जाए। वो बात को सुन करके अपने आप को माना, मैं पहले भी आशा कर रहा था वसुदेव बहुत सत्यनिष्ठ है, सही में पूरे मथुरापुरी में उन जैसे सच्चा व्यक्ति नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल सही माना था, मैं सोच रहा था वसुदेव सत्य है ही सत्य, सच में आ रहे हैं तुरंत। मुझे पूछते थे, मैं तो बोलता था छोड़ो क्या है, दो महीना जाने दो, लेकिन तुरंत लेकर आ रहे मेरे पास। कितने अच्छे व्यक्ति है, कितने सच्चरित्रवान है, मन में उनके प्रति प्रशंसा भाव आया। लेकिन खबर जब मिल चुका था कि वसुदेव रास्ते पर आ चुके हैं, अभी आपके पास पहुंचने वाले हैं, तो तैयार होकर के आपने ऑफिस में जाकर बैठ गया, आपने सीट पर बैठा और सिक्योरिटी को ऑर्डर दे दिया कि अगर कुमार वसुदेव आते हैं तुरंत मेरे पास हाजिर करना। तो वेट कर रहा था, तो थोड़ी समय के बाद वसुदेव पहुंचे। प्रहरी को तो पहले ही पता था, उन्होंने अभिवादन किया, उनको सम्मान किया, सम्मान करके उनको सीधा ले गया गेट के अंदर, युवराज आपके अपेक्षा में बैठे हैं ऑफिस में। तो ऑफिस के अंदर सीधा प्रवेश किए कुमार वसुदेव, जा करके सीधा उनके सामने पहुंच कर बोले, युवराज ये लीजिए आपके भागिने। तो कंस खड़े हो गए, हंसने लगे, उनको शाबाशी दिए वसुदेव को, और एक दृष्टि केवल देख लिए उस शिशु को। वो तो सोया ही हुआ था, जन्म के समय नाम मात्र को थोड़ा रोया था, उसके बाद सोया ही था, रास्ता भर भी सो रहा था, आंख बंद था उनका, अभी भी आंख बंद था। उनको एक झलक देखा कंस ने, देख करके बोला, उनसे तो मेरा कोई भय नहीं है, वो तो मेरा शत्रु नहीं है, आकाशवाणी कहा था कि अष्टम गर्भ मेरा काल है, तो उनको आप ले जा सकते हैं, इसमें कोई डर नहीं है, उसको ले जा सकते हैं। बोलकर खड़ा हो गया। हाय हाय, भाई है उनका, उनके छोटी बहन का सबसे पहला लड़का उनके सामने आया है, उनको बोलता है कि ले जो, दया करके विदा कर देता। कैसे मामा है, अब तो कोई स्नेह तो था ही नहीं, तो स्पर्श भी नहीं किया, ऐसे एक नजर बोल के ले जाओ उनको, उससे मेरे कोई भय नहीं है। वो अपने आप को सोच रहा था मैं ऐसा कह करके बहुत बड़े बदान्य बन गया, इतने उदार, अभी मेरा लोग प्रशंसा करेंगे मैं इतने बड़े दानी, सही में प्रशंसा किए, इतने बड़े घातक असुर आज कैसे उनके अंदर कृपा हो गया। और उन्होंने खड़े हो गया तो वापस आने के, बोला उनको ले जाइए कोई डर नहीं। तो वसुदेव जी ने उनको देखते हुए फिर उठा लिए, अपने गोद में लाकर बोले अच्छा जुवराज जैसे आपकी इच्छा, चल पड़े। मुड़े, मुड़ करके चलना शुरू कर दिए। कंस मुड़ करके देख रहा था उनके हाव भाव को, जैसे आए थे मुड़ करके ऐसे चले, बहुत शंका में पड़ गया। बोला मैं देखा जब से आ रहे थे भवन में ऐसे गंभीर मुद्रा में थे, ऐसे गंभीर, अब मैं उनके पुत्र को जीवदान दे दिया। उनके वो तो मन में सोचे थे बेटा मरेगा, लेकिन मारा नहीं, उनको जीवन दान दे दिया, तब भी एक घूंगा मुंह लेकर जा रहे, तब भी ऐसे करके जा रहे हैं जैसे कोई उत्साह नहीं, कोई आनंद नहीं, कुछ नहीं। क्या कारण हो सकता है उसका? इस बात को सोचकर कंस दोबारा बैठ गया चेयर में, सोचने लगा भाई क्या कारण है उसका, क्या रहस्य है उसका, कुछ उसका समाधान नहीं मिल रहा था। और वसुदेव जी तो जैसे आ रहे थे ऐसे ही जा रहे थे, उनके अंदर में कोई विचार में भावना में मुख विकार नहीं, कुछ नहीं। जैसे पुत्र होने से पहले गंभीर थे, पुत्र को लेकर आने इस प्रकार सारे पत्नियां पूरे अंतपुर रो रहा था, इस प्रकार क्रंदन से निकल करके आए, रास्ता में कितने नगर लोग उनको कितने बोल रहे थे, तभी भी अपने बिल्कुल उदास भाव से चल रहे थे, गंभीर भाव से। अब अपने पुत्र को कंस ने कृपा करके दे दिया, बोले लेकर जाओ मेरे कोई उस भय नहीं, ले जाओ। तभी भी ऐसे ही स्थिति था, कोई परिवर्तन नहीं, कोई खुश होते थोड़ा अच्छे बोलते थैंक यू बोलते नहीं, ये भी नहीं कभी थैंक यू कंस वेरी नाइस आपने छोड़ दिया, नो। जैसे दुखी मुंह होकर के आए थे ऐसे दुख मुंह होकर चले पड़े। कंस उसको देखकर हैरान में पड़ गया, हरी मैं उनको छोड़ दिया बिना मरे हो, तब भी कोई मजा नहीं खुश नहीं उसको। और नगरवासी बड़े उत्सुक थे जानने के लिए क्या हुआ क्या होगा, इसे तो कंसु को भय नहीं, क्या सचमुच मार देगा क्या मारेगा, बहुत आपस में विचार चल रहा था कॉलोनी में पूरा आसपास में। अब जब देखे कि तुरंत वापस आ रहे हैं वसुदेव, ओ अपने संतान को साथ में लिए आ रहे हैं, खबर पहुंच गया सारे, अरे वापस कर दिया कंस ने, छोड़ दिया और लेकर आ रहे हैं। लेकिन आ रहे वसुदेव को देखने, बोले अब भी ऐसे कोई सुख नहीं, क्या घटन हो गया, कोई कोई नई बात तो नहीं है कुछ, किस कारण से वसुदेव अब भी इतने गंभीर है, क्या पता कंस ने क्या कहा, कुछ और बातचीत हुआ क्या, चलो देखते हैं। उनका पीछे चलना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे, लेकिन पूछे तो को तो बिल्कुल किसी को कुछ बात नहीं कर रहे थे, ऐसे ही उदास भाव से वो चल पड़े थे वापस। कुछ लोग नगर से जानने के लिए प्रयासरत अवश्य हुए थे, लेकिन वो किसी को दुष्टि ना करके सीधा अपने भवन में वापस आए। वो वापस आ ही रहे हैं, इधर कंस बैठ करके सोच रहा है इसका क्या कारण हो सकता है। इतने में एक अद्भुत घटना घटा, कंस बैठ ही रहा था, अब आवाज आया श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब आपको समझ गया सो कौन आए होंगे, अब पिक्चर में कौन आ गए, अरे वो तो ठीक टाइम पर पहुंचने वाले पहुंच गए। अब हड़बड़ा गए, बोलकर खड़म पहने हुए, वीणा बजाते हुए, भगवत नाम लेते हुए सीधा इनसाइड द रूम। उनको तो कोई सिक्योरिटी फिक्योरिटी चेकिंग कुछ नहीं, उनका डायरेक्ट पहुंच गए। कंस हड़बड़ाते खड़ा, वास्तविक एक ही देवर्षि नारद जो हैं उनके लिए सुर असुर दोनों के दरवाजे हमेशा खुला रहता है, चाहे देवता हो चाहे असुर हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, सब जानते हैं ये तो अच्छे आदमी, हमारे अच्छे इन्फॉर्मेशन देंगे, भले को झगड़ा लगाते हैं जरूर लेकिन इन्फॉर्मेशन तो सही देते हैं। अगर किसी को अच्छा इन्फॉर्मेशन सही चाहिए तो ही इज द सोर्स। हाँ, तो कंस ने तुरंत खड़ा होकर, उनको पता था, खड़े होकर के प्रणाम करने जा रहा था, लेकिन इतने सौभाग्य उनको नहीं दिए कि देवर्षि को प्रणाम करेगा, वो पूजा करेगा, बोले अरे उठ बस बस बस, पता नहीं तुझे, मैं तो तेरे ऊपर स्नेह करने के कारण आ गया, तुझे पता है मैं कितने जल्दी में रहता हूं। आप लोग को तो जरूर पता होगा देवर्षि नारद भगवान के साक्षात मन है, जो भगवत इच्छा वही देवर्षि के कर्म है। तो वो प्रकट हुए और कंस को रोक दिया, बोले नहीं नहीं कोई उपचार नहीं चाहिए, मुझे जल्दी है, बड़ी शीघ्रता है, केवल आपको इतने पसंद करता हूं, आपके स्नेह के कारण मैं आ गया कुछ बताने के लिए। हाँ बताइए, हाथ जोड़ के कंस खड़े हो गए, मैं जानता हूं आपके पास कुछ सही इंफॉर्मेशन आएगा प्लीज। तो तुरंत देवर्षि जी ने शुरू किए, बड़े आश्चर्य मुझे लग रहा है, आप महाअसुर काल निमी साक्षात आप अपने आप को ही भूल गए, पता नहीं आपको। कंस चौंका, तो उनके पूरे हिस्ट्री प्रीवियस हिस्ट्री बता डाले, वो कैसे कार्य में असुर था, देवासुर संग्राम में कैसे मरा गया था, कैसे बदला लेने के लिए वो तपस्या किया, कैसे द्रुमिल दानव के माध्यम से उन्हें दोबारा वहां इस वंश में आया, सारे प्रोजेक्ट एजेंडा सब बता दिए उसको। और तो सुन करके बिल्कुल अपने पूर्व परिचय पा करके अमीर हो गया उन्होंने। तब बताए कि एक बात और बताऊं, गड़बड़ी तो नहीं है, बताओ, वेरी सीक्रेट मैसेज। अभी मैं आ ही रहा था वैकुंठ से, अब मैंने देखा कि बड़े भारी मीटिंग चल रहा है। कहां पे मीटिंग? हाँ, वो सुमेरु पर्वत के ऊपर बड़ी भारी मीटिंग, ब्रह्मा तक थे, अरे भगवान नारायण भी थे, मैं भी वही था। और क्या बताऊं, वेरी सीक्रेट मीटिंग। क्या? अरे बाकी तो बहुत विषय वस्तु से चर्चा चल रहा था, लेकिन मुख्य विषय क्या था जानते हैं? क्या मुख्य विषय? नहीं, मेन एजेंडा था आपको मरवाने का, यही टॉपिक था, उसी के ऊपर खूब मंत्रणा चल रहा था, आपको बध करने का विषय में खूब मंत्रणा चल रहा था। कंस तो मानो खाड़े खड़े पसीना उतर गया उसको, अभी तो सुना था कल आकाशवाणी, अब तो देवर्षि जी सारे डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं उनको, सारे देवताओं के पूरा मीटिंग चल रहा था, उनका मंत्रणा चल रहा था। फिर और क्या, नारायण ने आश्वासन दे दिया, बोले मैं आपके साथ हूं, मैं आता हूं, सब आपने अपने टैक्स दे दिए, सब आपने अपने जन्म लीजिए, मैं आता हूं। अच्छा, कहां? अरे क्या बताऊं, नंदाद्या जितने ये जो गोकुल में नंदा आदि है ना, गोप गोपी सारे देव और देवी हैं। अरे दूसरी बात क्या कहूं, आपके स्वजन परिवार में आपके स्वयं पिता भी मालूम है कौन है, वो भी प्रजापति अंश है, तेरे चाचा भी है, और सुरसेन वंश में जितने सारे देवताएं तो हैं। क्या बताऊं, सच बात तो ये है कि अभी पृथ्वी तल पर केवल जितने राजपुरुष हैं दो ही अंश से आए हैं, कौन ना, कुछ देवता है कुछ असुर है, ये तो सारे असुर देवता हैं, बाकी तेरे जितने सपोर्टर है ना सारे असुर है, तुम्हारा जितने फ्रेंड वर्ग है सारे असुर कुल के है, वही बदला लेने के सब असुर देवासुर संग्राम में जो मरे थे, सब मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, चाहे आपका ससुर जरासंध हो, चाहे आपका फेड़ बाणासुर हो, सम्रासुर हो, ये हो, जितने सारे, एक तो असुर कुल और बाकी सारे जितने स्वजन परिजन आपके सारे देवकुल से आए, और देवता लोग नहीं, यहां मीटिंग में पास करके आए फटाफट जन्म ले, और लेने वाले हैं सारे, नारायण स्वयं बोल दिए मैं आ रहा हूं, सब आपने प्रिपरेशन करो, उनके कुल में जब सक जन्म लो मैं आता हूं, सारे देव और देवी आ गए हैं, एक ही उद्देश्य उनका, आपको कैसे बद करवाएंगे। ओरे बाप रे, कंस को तो मानो अब क्या करे, सीरियसली सुन रहा था सब, यही से मंत्रणा चल रहा, तो इस सुन करके कंसा ने थोड़ा सोच करके थोड़ा हंसने लगा। जब हंसने लगा तो नारद जी ने बोला, अच्छा मैं समझ रहा हूं तू क्या सोच रहा है। क्या? नहीं तो सोच रहा ना कि ये नारद जी कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, केवल झगड़ा लगाना जानते हैं, यही सोच रहा ना, मुझे पता है। तो सोच रहा है कि अरे देवता अनशक रूप में आकर मेरे क्या बिगाड़ डालेंगे, जब साक्षात देवलोक में उनके घर में घुस करके उनको पराजित कर मारपीट करके आया, कुछ नहीं कर पाए, अब यहां आकर के हमारे घर में मुझे क्या करेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे, यही सोच रहा ना, इससे हंस रहा ना। हाँ ना कंस, मैं तो मानता हूं तू बड़े नीतिज्ञ हो, बुद्धिमान भी हो, थोड़ा प्रशंसा भी कर लिए, ये तो तुझे पता जरूर होगा, शत्रु कितने भी छोटे क्यों ना हो लेकिन उपेक्षा करना नहीं चाहिए, कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, शत्रु तो शत्रु ही है। और इस बार तो शत्रु तुम्हारे स्वजन परिजन आपके घरे अगल बगल बैठे हुए हैं, कोई दूर थोड़ी है, तुम्हारे चाचा ताऊ पिता बनकर के आए, बोले मैंने सुना तूने वसुदेव की पहले संतान को वापस कर दिया। नारद जी ने बड़े आश्चर्य प्रकट करके कहा, मैंने ये सुना, सत्य बात है, वसुदेव के प्रथम संतान को लाया था तेरे पास, तुम वापस कर दिया उसको ना। हाँ, उनसे मेरा तो कोई भय नहीं था, आकाशवाणी तो वही था कि अष्टम गर्भ मेरा काल है, तो उसको क्यों मारूं। नारद जी ने हंस पड़े, हाय हाय, मैं तो सोच रहा था तुम बुद्धिमान हो, हाय गया उन लोग के साथ रखे तेरा बुद्धि खराब हो गया। कंस तुरंत आश्चर्य हो गया, कोई भूल कर दिया तो नहीं, मैं कही क्या गड़बड़ी है मेरे से, क्या क्या मिस्टेक हुआ, मिस्टेक क्या हुआ, तू खुद बोल रहा है कि दैववाणी हुआ देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल है, तुझे पता है अष्टम गर्भ क्या है कैसे, तुरंत झुक करके एक वृत बना करके अष्टदल कमल बना दे, अंगूठी में रेखा काट करके दिखा दिए उन्हें, बोले बताओ ये आठ है, गोल बना दिए, इसमें से कौन एक है कौन आठ है, जब यहां से गिनेंगे जिसे हमारे पांच अंगुली है, वहां से कौन पांच है कौन एक करेंगे, यहां से गिनेंगे ये पांच होगा, यहां से गिनेंगे तो ये पांच होगा, यहां से जहां से शुरू करो उसके बगल वाला आठ होगा, अब कहां से गिनना शुरू करेंगे आपको क्या पता है, तुझे बताए, अरे अंकानंग वामनोगति, पूरे सूर्य से आपको अच्छे तरह से पता है, जब भी नारायण कभी असुर को बद्ध किए हैं छल करके मारे ना, नहीं सीधा सीधा किसको मारते हैं, जब चीटिंग करके मारते हैं उनका वही आदत है, तो इसी बार क्या करेंगे, तुझे सीधा सीधा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, तुझे पता नहीं, यहीं से करो तो किसी को आठ घोषित कर देंगे क्या पता। अरे बाप रे बाप, कंस तो बिल्कुल सीरियस हो गया, सीरियस होकर के उसको देख रहा था, जहां देवर्षि जी ने वृत बना करके दिखाए थे गणना करके, बड़े गंभीर मुद्रा से देख रहा था, मानो उनके डेथ ऑर्डर वहीं पड़ा हुआ है उनके मर्डर का ऑर्डर पास करके पेपर वहीं पड़ा हुआ है, यही से घूर घूर के देख रहा था उसको। अब इसी प्रकार मोड में छोड़कर देवर्षि बोले, ठीक है मैं जल्दी में आ रहा हूं, नारायण नारायण, अब उनको प्रणाम करें कुछ बताए और भी चांस नहीं दिए चल पड़े। आप इतने से उनको इतने मूड खराब कर दिए कि वो तो इतने पसीना उतर गया उनका। अब तुरंत तो सीरियस हो गया। एक बार जब नारद जी ने हस्तिनापुर में आए थे तो विदुर जी ने उनको पूछा था, बोला आपका क्या और कुछ काम नहीं है, कहा कोई भगवान के मां बाप होंगे, कहा जाकर उनको बता दिया होंगे मरवाने के लिए, उनको इतने पर कष्ट देने के लिए आपके। नारद जी ने कारण बताए थे उनको, बोले देखो मेरा तो एक ही प्रोजेक्ट होता है सबको उद्धार करना, कितने जल्दी करूं कैसे करूं मुझे पता है, बाकी आप जानने चाहते हो और भी कारण है उसका, क्या कारण है ना, भविष्य मन्वंतर में ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे मरीचि, मरीचि के पत्नी उरुणा देवी से छह पुत्र हुए थे, छह पुत्र बड़े ज्ञानी थे, विवेकवान थे, शास्त्रविद थे, लेकिन एक बार ब्रह्मलोक में हुआ क्या, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने बागदेवी सरस्वती के प्रति क्षोभित हो गए। उसको देख करके ये उनके छह नातियों ने हंस पड़े उनके ऊपर देख करके, तो ब्रह्मा जी को अपमान बोध हुआ, तो उन्होंने खड़े होकर उनको डांटे, बोले तुम्हारे पितामह को अपमान कर रहे हैं दुर्बुद्धि, तो उनको साप दे दिए, बोले तुम सब असुर बन जाओ। तो पितामह ने इस प्रकार साप दिए, तो सभी मरीचि सहित बाप बेटा दोनों मिलकर के पिताजी की प्रार्थना की, ब्रह्मा जी की स्तुति की, गलती हो गया माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले चलो मैं बोल दिया, अगर आप चाहते हैं असुर तो बनेंगे ही, लेकिन साक्षात भगवान जब आएंगे उनके संसर्ग पा करके आपका मुक्ति होगा, भगवान के सानिध्य पा करके आप दोष मुक्त होकर आएंगे, यही बोल दिए। अब उन्होंने वही छह पुत्र ने जिनको षडगर्भ कहा गया, उन्होंने तुरंत वहां असुर कालनमिका पुत्र होकर जन्मे, कालनमिका बेटा होकर जन्म लिए, और जन्म लेकर के असुरों का और असुरों का तो हमेशा लड़ाई होता है, देवताओं के साथ युद्ध में छह को छह मारे गए, पूरा छक्का सारे मारे गए। मर करके दोबारा फिर जन्म हुए असुर होकर के, कहा इस बार हिरण्यकश्यप के बेटा होकर जन्म हुए, हिरण्यकश्यप के बेटा होकर जन्म हुए, और पिताजी ने खूब लंबे समय तक जाकर के तपस्या की मंदरगिरी में, तो पिताजी ने जैसे आए तो छह कुमार ने भी वो निकल पड़े तपस्या करने, बोले पिताजी भी ऐसे करते हम भी करेंगे, जाकर खूब तप किए मंदराचल में, तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट भी किए, ब्रह्मा जी आए उनको बर दिए, सुर असुर से विजयी होंगे ये वरदान प्राप्त करके आए, आकर के सर्टिफिकेट दिखा पिताजी को, पिताजी देखिए हम भी आपके तरह करके ओके करके ब्रह्मा जी से वर लेकर आए हैं, इतने तप करके सोचते थे पिताजी खुश हो जाएंगे, बढ़ेंगे वाह सो नाइस अच्छे हमको प्रसन्न होंगे बधाई देंगे, लेकिन बात उल्टा हो गया। हिरण्यकश्यप जैसे आके बताए, हिरण्यकश्यप गुस्सा में उनको खूब गरज कर गाली दिया, मूर्ख ये क्या परंपरा बना देंगे अपने कि मैं होते हुए मेरे परिवार के लोग भी मेरे कुल के लोग भी जाएंगे दूसरे को तप करेंगे दूसरे से बर लेने के लिए, अरे मैं स्वयं इतने शक्तिशाली बैठा हूं, तुम ब्रह्मा की तपस्या करने जाते हैं उससे वरदान लेने के लिए, तुम मेरे पुत्र हो मेरे तपस्या के बिना मुझे पूछे बिना भी मैं आपको ऐसे वरदान दे सकता था, ऐसे वरदान दे सकता था जो चाहे सो आपको दे सकता था, लेकिन मुझे छोड़ करके ईश्वर तो मैं ही हूं, मुझे छोड़ करके आप तपस्या करने गए ब्रह्मा को, मैं तभी ईश्वर नहीं बना था तो मैं तपस्या कर ब्रह्मा से, लेकिन मैं अभी बन चुका तो मुझे छोड़कर ये बाड़ी दिस, ये परंपरा आपने गलत कर रहे हैं, आप मूर्ख हो अज्ञानी हो, मैं आपको त्याग देता हूं, मैं आपको पुत्र के लिए स्वीकार नहीं करूंगा, गुस्सा होकर उनको त्याग दिया, बोले जाओ सब जा करके सुतल लोक में दीर्घ काल तक सोते ही रहो, केवल सोते रहेंगे नहीं तुम्हारे पूर्व जन्म के बाप आकर तुम्हारे मारेगा तब जाएगा जब तक सोते रहो। तो हिरण्यकशिपु का साप, वो तो साक्षात विजय ही थे भगवत पार्षद थे, उनके बात तो सच होना ही था, तो इसलिए षडगर्भ अब हिरण्यकशिप से हट करके साप पार के गए और जाकर के सुतल लोक में और षडगर्भ के नाम में सोए हुए हैं, वहां सोते ही रहते हैं। अब उनको उद्धार के भगवान आएंगे, ब्रह्मा जी के वचन है भगवान के सानिध्य से उनका उद्धार होगा, सापोद्धार होगा, तो इसलिए देवकी के गर्भ में माया उनको आकर्षण कर रहा है, एक एक करके छह पहले आकर जाए उनको उद्धार हो जाए, उन्हीं को आकर्षण करे, वो तो सब सोने वाले ही हैं, वो सोने वाले जब आते हैं तो माता देवी के प्रभाव सतोगुण के प्रभाव भी आलस आ जाती है, वो भी तमोगुण आ जाती है, सोती रहती है आलसी आती है उसको, और इसी कारण से मैंने कंस को बोला कि कंस उनका वही बाप था, काड़नवी दोबारा जन्म हुआ है, वही उनका बाप है, वही बाप ही उनको मारेगा। ये जो छह बेटे इसको मारा ना, वही उनका असली पिता है, वही बाप ने उनको बेटा को एक एक करके मारेगा, तभी उनका उद्धार होगा। ये तो हिरण्यकश्यप का अड़त व्यवस्था था, तो नहीं मारेगा तो कैसा होगा, तो इसलिए व्यवस्था को मुझे पूरा करना है, इसलिए उनको उसका है, नहीं तो भूल गया था। तो इस प्रकार कंस को बिल्कुल टेम्पर में छोड़ करके नारद जी तो आपने चले गए, और कंस तुरंत सावधान हो गया, एक बार गेट में आकर गरज करके ऑर्डर दिया प्रहरी को, सिक्योरिटी को, एक इमीडिएट ऑर्डर करो सेनापति को, सन्नद्ध रहे, बिल्कुल तैयार होकर रहे, और ऑर्डर किया ड्राइवर को बुलाओ, अभी मुझे जाना है। यहां वसुदेव जी ने तब तक चलते चलते आकर के पहुंच चुके थे लगभग भवन के पास, सारे कई लोग भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे, किसी क्या हुआ पूछेंगे, क्योंकि बोलते नहीं, और देखे कि वसुदेव जी ने अपने संतान को लेकर आ रहे हैं, जो अंतपुर के दासी नारी है उनके पत्नी है, सब देखे खुश हो गए, जाके खबर दिए अंदर जी, कुमार वापस आ गए और संतान सुरक्षित वापस आया है, सब खुश हो गए। आकर पूछे क्या हुआ, क्या कहे युवराज, कैसे हुआ, क्या बात हुआ, लेकिन किसी को वसुदेव कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे खिन्न वदन जाकर के सीधा प्रसूति गृह में गए, गए ऐसे उदास भाव से जाकर के माता देव की बैठी थी, बोले देवी ये लो, पुत्र को उनको देने लगे। माता देव की वो चौंक करके उठी, आ गया हमारा लाल कह करके बड़े प्रसन्न चित्त से अपने स्वामी के हाथ से अपने संतान को ले ली। आते आते केवल इतना ही कहे संक्षेप में वसुदेव जी ने कि देवी ज्यादा प्रसन्न मत हो, ज्यादा प्रसन्न मत हो, जितने क्षण तक उनका जिंदगी है इतने क्षण तक उनके गोद में रख लो बस, ज्यादा खुश मत हो। तो तुरंत चौंक करके माता देवकी ने पूछी, तो युवराज ने क्या कहे? आज माता देवकी का भी भाव बदल गई, आज कंस को उन्होंने कई बार भैया भैया कहते, आज भैया भी नहीं कह पाई, बोलती है युवराज क्या कहे। तो वसुदेव ने कहे बस इतना ही कहे कि ये तो मेरा शत्रु नहीं है, उसको वापस ले जाओ। तो आप क्यों ऐसे खिन्न है ना देवी, तुम तुम्हारे भैया को इतने नहीं जानती हो, लेकिन मैं अच्छे तरह से जानता हूं उनके स्वभाव, किसी क्षण में उनका विचार उनके मन बदल सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अब तो बोल दिए मैं माफ करता हूं ले जाओ, लेकिन एक मिनट में फिर बदल सकते हैं, असुर स्वभाव है, कोई टिकाव नहीं उनका विचार, तो इसलिए कभी कोई अघटन हो सकता है। मेरा हृदय तो बोलता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए मैं तो बिल्कुल उदास रहता हूं, मैं आशा छोड़कर बैठा हूं, तो इसलिए तुझे बोलता हूं कोई ज्यादा खुश मत हो। बाकी लोग जो पत्नियां थी सब देखे कि बेटा तो जाकर के वापस आ गया, मृत्यु लोग गया था, कंस तो साक्षात मृत्यु था, उनके पास जाकर के फिर वापस आ गया अपने घर में, अब तो उत्सव करें कुछ करें, कुछ आरंभ कर रहे थे मंगलगान। वसुदेव जी ने संकेत करके रोक दिए, बोले नहीं स्टॉप। सबका मन में फिर शंका आ गया, क्या गड़बड़ हो गया, कुछ तो जरूर होगा। वसुदेव जी ने अभी उदास अभी सबको मना भी करते हैं, कोई कुछ मत करो, मतलब कुछ झगड़ा हुआ, क्या नया बात हुआ, अब इस नया बात क्या हुआ, क्या घटना हुई, ये सोच मन में आ ही रहा था। मथुरा के कुछ नागरिक ये जानना भी चाह रहे थे, बड़े उत्सुकता से आ ही रहे थे रास्ते पर चल करके, क्या घटना है, क्या खबर है। अब दिखाई पड़ा युवराज कंस बड़े बेगगामी रथ में बैठ करके दौड़ते हुए आ रहे हैं। अरे युवराज कंस आ रहा है, कंस आ रहे, किधर जा रहे, क्या हुआ, क्या हुआ, और कौन पूछेगा, वो तो स्पीड में भाग रहा है। सीधा जा करके गाड़ी पार्क किया, कंस का गाड़ी पार्क किया, कहां, वसुदेव जी का भवन के सामने सीधा गाड़ी पार्क किया, सारथी अभी गाड़ी रोका ही नहीं, तुरंत कूदा, जंप किया कंस ने रथ से, कूद पड़ा। वसुदेव जी ने एक झांकी देख ली, कुमार युवराज आप, बस इतने ही, ज्यादा कुछ कहने का उनको अवसर नहीं मिला। एक बार जो देख लिए, यही सोच भी लिए कि निश्चित रूप से कुछ अघटन होने जा रहा है अभी तुरंत, और उनको रोका भी नहीं जा सकता, यहां कुछ किया ही नहीं जा सकता। पत्थर की भांति वसुदेव जी देखते ही रह गए क्या होने जा रहा है। वो कंस कूदा, तुरंत घुस गया अंतपुर में। अंतपुर का तो उसका कोई स्थान अपरिचित था ही नहीं, पहले कई बार आया भी था, और डेली डेली रिपोर्ट मिल भी रहा था उनके पत्नियों से किस कोने में कहां किरपकार हो रहा है। सीधा घुस गया, सारे सेवक सेविकाएं परिचारिकाएं सब थे, उनमें से आधे तो उनके ही चचेरी सगे बहनी भी थे, उनको विचारों को फुर्सत नहीं मिला, थोड़ा साइड दे, युवराज आ रहे हैं, थोड़ा रास्ता दे, कहां जाएं, रास्ता देने के लिए उनको फुर्सत ही नहीं मिला। उनके अंदर से उनको धक्का सा देते हुए घुसते चला गया कंस, बड़े शीघ्रता से सीधा जा करके पहुंच गया देवकी के पास। अभी तो देवकी खुश होकर थोड़े समय लिया था ही गोद में, अब सारे बाकी उनके बहन जो थे, बाकी पत्नियां हैं, बाकी सेविकाएं हैं, युवराज स्वयं आगे ऐसे आ रहे हैं, क्या मूड, पूरा रक्त चक्षु भ्रुकुटी ऊपर चढ़ गया है, अंगार जैसे जल रहा है, पूरे शरीर कंप रहा है, थर रहा है। इस प्रकार उनके रंग रूप देख करके सारे आश्चर्य होकर जहां तहां ठिठक गए। स्त्रियां थी अवला ही, क्या करेंगे, अंतकुल हठात प्रवेश की, इस मूड में धक्का मारते मारते घुसे जा रहे हैं, कोई कुछ बोल भी नहीं पाए, कुछ भी नहीं किए, जहां तहां दीवार में इसे छिटक करके खड़े हो गए, देख रहे हैं, देखते देखते सीधा पहुंच गया और देवकी कुछ बोले, मुझे शिशु को मिले रहा हूं, बिना बोले पूछे सीधा झुका, बाएं हाथ से सद्यजात शिशु के पैर को हाथ में पकड़ा और रेई से खींचा, खींच ली देवकी तो ऊपर देखा, एक आर्तहरि करुण चित्कार, भैया कह करके चित्कार करके मूर्छित हो गई। कुछ करना ही नहीं था, सभी के देखते देखते बाएं हाथ से छीन करके बाहर आ गया, प्रसूति गृह से बाहर आकर के आंगन में एक पत्थर पड़ा था, उठा कर पटकाया उसमें, सद्यजात शिशु का ऐसे नन्हा सा सिर चूर चूर हो गया, पूरे पत्थर रक्त में लथपथ हो गया। कंस के वस्त्र, उस वस्त्र में कुछ रक्त का छीटा उसके पाप के साखी बनकर रह गया। आज सुबह सुबह कोई सुबह सुबह भगवान को, सूर्य को उदय होते तो कोई जल चढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं आज का दिन कैसा था, आज इस प्रकार के उनको चढ़ाया गया, सद्यजात शिशु का रक्त। और सभी देख रहे थे, कोई कुछ चू चा कू का कोई नहीं करे, देख रहे थे क्या हो रहा है, बोलने का किसी का साहस ही नहीं था। देवकी अभी तो मूर्छिता ही पड़ी थी, सीधा उसको हाथ में जो टुकड़ा सब का पड़ा था वहीं फेंका, फेंक करके सीधा आया। वसुदेव जी से बैठे थे, बिल्कुल देख रहे थे, वो समझ गए थे होने वाला, उनको सीधा आया, वो बैठे थे इसे उदास, आकर उनके सामने खड़ा हो गया, तलवार खींच लिया, गरज करके बोला, भयानक आदेश दे करके, आप बंद किए गए हो। जी युवराज बैठ जाओ रथ में, चुपचाप आकर बैठ गए। देवकी भी बंदी किया गया है, बुला लो उसको। बाप रे बाप, देवकी तो मूर्छित पड़ी हुई है प्रसूति घर में, अब भी अभी तो प्रसूति गृह से बच्चा जन्म ही हुआ था, नाल छेदन हुआ था, आधा घंटा के अंदर ही काम। अब सब देख रहे हैं, वसुदेव जाकर के रथ में बैठ चुके हैं, कंस ऑर्डर दिया खड़े हुए, बुलाओ उनको जल्दी। तो वसुदेव ने प्रांगण में जो कुछ महिलाएं थी उनको संकेत किया, ले आओ देवकी को, ले आओ। तो उन्हीं के ही दूसरी पत्नी आपने सगी बहन देवकी को उसी मूर्छित अवस्था में हाथ में उठा करके लेकर के आए, लाकर रथ में बैठाए, नहीं लोड कर दिए। वसुदेव जी ने अपने गोद में उसको उठाए, तभी माता देवकी मूर्छिता थी, रक्त अंगा थी और इस प्रकार के सद्य प्रसूता अपने पत्नी को इस प्रकार स्थिति में गोद में लेकर के मूर्छित अवस्था में वसुदेव जी ने मानो जंत्र की भांति बैठ गए, जीवन से कुछ है ही नहीं, प्राण बास केवल आदेश पालन करना है, बैठ गए। कंस तुरंत चढ़ गया, ड्राइवर को ऑर्डर किया कारागार जेल में ले चलो, सीधा जेल को चल पड़ा रथ। जेल में जाकर के प्रहरी को तो देखा जबरा स्वयं आ रहे हैं, गेट पहले से खोल दिया गया था, गेट खोल दिया और सीधा गाड़ी अंदर ले गया उन्होंने, लेकर के एक कमरा खुलवाया। पहले से तो पता नहीं था, नहीं तो पहले साफ सुफ करके रेडी कर रखा था, तो इमीडिएट एक्शन। कमरा खुलाया, अभी साफ सुफ नहीं था कमरा में, सीधा उनको बोला उतरो वहीं से जाओ। कई और सहायक आ गए थे, उनको ही धूल धूसरित जेल के कोठरी में उनको डाल करके बोला वसुदेव तुम अगर अभी आप कहने का शिष्टता ही भूल गया, बोला तुम अगर शांत रहोगे तो आपके सारे व्यवस्था में करूंगा, ठीक ठाक रहोगे, चुप। बोले युवराज कोई नहीं सुनेगा तेरा कुछ, अभी कुछ सुनना नहीं है, रहो चुप। कुछ सुना ही नहीं उनका, तुरंत आ गए वापस, सिक्योरिटी को बोल दिया हाई कमांड पूरे गेट को बंद रखना हमेशा, मेरा बिना ऑर्डर में कोई आए नहीं कोई जाए नहीं, हाई टाइट सिक्योरिटी पास इशू किया आने जाने में, अंदर पूरा ध्यान देना। आ गया रथ बाहर आ गया, मुख्य दरवाजा जेल का बंद हो गया। वसुदेव जी देखते देखते धन करके बैठ गए इस धूल भरा कमरे के अंदर, जहां पर त्रिभुवन के ईश्वर के भाभी जननी मूर्छित अवस्था में रक्त वस्त्र अवस्था में यही पड़ी हुई थी धूल पर, वहीं पर धूल में बैठ गए उनके पिताश्री। अब कंस चला गया। ये मैसेज मथुरा के नागरिक तो सब देख ही रहे, सबका सामने पब्लिकली गंड किया, रिपोर्टर तो इमीडिएट फैला, जो भी भागे दौड़े इतने मर्डर सब देख करके चित्कार करके कहां कहां गए, तुरंत खबर पहुंच गया राजभवन में। राजभवन में खबर पहुंचते ही महाराज उग्रसेन तुरंत गरज करके बोल पड़े, क्रोध से कांपते हुए बोले कंस को बंद करो, जादव महासभा उनके न्याय करेगा। तुरंत गुस्से में खड़े होकर के बोले, आदेश दे दिए बंद किया जाए उनको। उन्होंने ऐसा किया, देवकी के पुत्र मार दिया, उनको जेल में डाल रहा है। महाराज ने कर ही क्या सकते हैं, आदेश दिए कंस को बंदी बनाने के लिए, उनके न्याय किया जाएगा। कंस ने इधर जेल में डाल करके वापस आ रहा था, अश्व से दौड़े, अश्व झपटा, एक सैनिक दौड़कर आ रहा था, रास्ता मिला, बोले युवराज महाराज ने आपको बंदी बनाने का आदेश कर दिए हैं। कंस ने हंसने लगा, पता है क्या आज्ञा है युवराज, इमीडिएट घूमो जाओ, जाकर सेनापति की बोलो पूरा राज दरबार घेराव कर दिया जाए, चलो इमीडिएट मुड़ा और चला दौड़ करके। बंदी बनाएगा किसको, बंदी बनाने का ताकत है किसका, पहले से सेनापति को होशियार ऑर्डर देकर रहा था, कंस कोई पागल नहीं था, प्रमत्त नहीं था, व्यवस्था पहले करके आया था उन्होंने। पहुंचते ही देखा कि पूरे राजभवन को चारों तरफ सैन्य घेर चुके हैं, पूरा मिलिट्री उनके हाथ में था, आर्मी उनके हाथ में था, पूरा घेर कर रखे हैं, मिलिट्री रूल लागू हो चुका है। और अंदर में महाराज उग्रसेन, उनके कई अंगरखी और अनेक जाद कुमार जो कंस के इस प्रकार व्यवहार से बड़े खिप्त हो चुके थे, बहुत गुस्से में थे, महाराज अब आदेश करें, हम मरेंगे मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, उनको गुस्से में थे और बहुत हो हल्ला कर रहे थे अंदर, और सब अंदर बाहर आना चाह रहे थे कंस को, वो जानते थे कि इतना आसान से बंदी नहीं बनाया जा सकता, उनको शायद शक्ति लगाना पड़ेगा, वो बाहर आना चाह रहे थे, लेकिन कंस पहुंचने से पहले घर के अंदर बाहर में युद्ध छेड़ चुका था, युद्ध छेड़ चुका था। किसके अंदर युद्ध हो रहा था? युद्ध और किसी के अंदर नहीं रह रहा था, साक्षात महाराज और उनके अंगरखी और कुछ जादव कुमार और उन्हीं के ही सैन्य शक्ति, उन्हीं के ही सेनापति, वही मथुरा राज्य के सेनापति और सैन्य के साथ मुठभेड़ चल रहा था। कहां हो रहा था? राजभवन के मुख्य दरवाजे के ऊपर ही। वो बाहर आना चाह रहे थे, अंदर घुसना चाह रहे थे, और दोनों में वहीं पे लड़ाई युद्ध। कंस अपने रथ में बैठ करके गया, वहां देखा, बड़ा पसंद किया लड़ाई, अच्छा चल रहा है ठीक, एक्शन हो रहा है। कुछ समय बैठ करके देखा, लेकिन उनका स्वभाव में यह नहीं था कि प्रतीक्षा कर पाए, प्रतीक्षा करना उनके स्वभाव में नहीं होता था। देख रहा था कि लड़ाई चल रहा है, स्वयं उनके पिताश्री उग्रसेन भी खड्ग उत्तोलन करके गुस्से में आ रहे हैं, और उनके असुर सेनापति मार खा कर भी उनके ऊपर अस्त्र चलाने के लिए साहस नहीं चकते। अरे महाराज है, उनको कैसे हिचकते हैं अस्त्र चलाने में, स्वयं आघात खाकर भी उनको आघात कर प्रति आघात करने के लिए साहस नहीं कर रहे हैं, हिचकते हैं, ये देख लिया उन्होंने, और उसको देख करके सहन नहीं हुआ, तुरंत हुंकार करके गर्जना करके कूद पड़ा रथ से, उनका भयानक मदगर उठा लिया। अरे वो तो महाबली था ही, अंदर घुस करके, और उनके जो सैन्य शक्ति थे उनको तो इसी रास्ता छोड़ दिए, घुस करके भयानक मुद्गर प्रहार घुमा करके करने लगा। उनके गदा प्रहार से बिचारे जद कुमार और उनके अंगरखी के सब पटते गया, एक एक प्रहार से सब मारते गया, सब बिछाते बिछाते अंदर घुस गया सीधा। आज तो इस शिष्टाचारी भूल गया, आपने स्वयं पिताश्री के दक्षिण भुजा पर गदा चलाया, वृद्ध पिताश्री दक्षिण बाहु में गदा के प्रहार हुआ, हाथ से खड़ग छिटक करके वहीं इतनी दूर में पड़ा, नीचे गिरते गिरते वो खड़े होकर उठे, उठकर देखे आपने ही ज्येष्ठ पुत्र सामने खड़े है, बड़े ग्लानी में क्रोध में कांपते हुए रोते हुए इस प्रकार विचित्र परिस्थिति में चिल्ला करके बोले, तू मेरे पुत्र नहीं हो कुरंगार, तू मेरे पुत्र नहीं हो सकता, ऐसा कह करके आपने हाथ से अपने मुकुट निकालकर फेंक दिए, मुझे बंद करो, मुझे मार दो आज तेरे हाथ से, मैं जीना नहीं चाहता हूं, ऐसे कोई पुत्र मुझे त्यज क्या, तुझे त्याग करता हूं। ये सब भाव का बोली का कुछ प्रवाह इस निष्ठुर चित्त असुर के ऊपर कुछ नहीं पड़ा, आदेश किया बंदी करो उनको, लेकिन तभी भी कोई साहस नहीं कर रहे थे महाराज को बंदी करने के लिए, इस स्थिति में भी कोई नहीं साहस करते थे, यद्यपि उनके अंगरखी लगभग मर चुके थे, सकड़ों डेढ़ बड़ी पड़ा था, रक्त के पूरे किच खेल गया था राजभवन के अंदर, कुछ बचे हुए थे उनके असुर सैनिक, वो भी साहस नहीं कर रहे थे। निलज्ज पुत्र स्वयं अपने हाथ से अपने पिता को पकड़ा, हाथ पकड़ कर की खींचा, घिसटते हुए लेते आया, ला करके वही रथ में लोड किया जिस रथ में उस भुवन वंदे दंपति को लेकर के दोपहर में जेल में डाला था, उसी रथ में उनको ला के लोड किया अपने पिताजी को, घिसटते हुए खींच के लग बैठो, बैठा दिया, बोला सर ड्राइवर को जेल अगेन। उसी दिन सूर्यास्त से पूर्व उस जेल का दरवाजा दोबारा खोला और उसमें स्वयं महाराज उग्रसेन को लेकर के दूसरी तरफ की कक्षा खोल करके उनके यहां डाल दिया और आया। आते ही गेट पर मुख्य दरवाजे पर गाड़ी रुका, रथ रुका, और जो जेल इंचार्ज था, जेलर था, वहीं पे उनको बोला कि आज से आपका छुट्टी, गेट आउट, उनको निकाल दिया वहीं से। क्यों? उनको जानता था कि जेलर भी महाराज के आज्ञाकारी है। वहीं पे इमीडिएट उसी शाम के समय उनको निकाल दिया, निकाल कर इमीडिएट नया असुर पोस्टिंग कर दिया वहां जेलर के रूप में, पोस्टिंग करके आया। मथुरा में अनेक भुजवंश की नरपति राजा बन गए हैं। मथुरा नगर में एक कारागार भी है, किसी का उन पर कोई ध्यान नहीं जाता था। ऐसे जेल तो सिटी से थोड़ा बाहर होता था पहले, आजकल सेंटर में होता है, पहले सिटी के साइड में होता था, नगर से थोड़ा बाहर था, बहुत पुराना हो चुका था। महाराज उग्रसेन का समय में तो किसी एक दिन भी कोई उसमें गया ना आया, कोई काम हुआ, कोई खुला नहीं था दरवाजा। उनके पहले कई राजा महाराजा के समय भी जेल का कुछ काम नहीं था, ऐसे शांत नृपति सब थे। बेचारा जो जेलर था वृद्ध हो चुका था, उनके पूरे जीवन काल में नौकरी समय में कोई एक भी बंदी इस जेल में नहीं आए थे, एक बार भी कोई द्वारा खोलने के लिए उनको चांस ही नहीं मिला था। इतने साल के नौकरी कर चुका था, कोई एक बार भी जेल खुलने का, केवल साल में एक बार जेल खुलता था, जब बरस में बाद में लक्ष्मी पूजा का समय आता ना, सब लिपाई पोताई करते हैं, थोड़ा रिपेयरिंग लिपाई पोछा करने के लिए करते, नहीं तो नहीं। ऐसे ही पड़ा था कई सालों से, सैकड़ों साल से परित्यक्त अनावश्यक होकर पड़ा था, कोई उसको ध्यान नहीं देते थे, कभी आवश्यकता नहीं था। लेकिन युवराज कंस जब सेना को संभाले, आपने राज्य का कई अनेक विभाग को संभाले, तब उन्होंने हाई बजट पास करके उसको रिनोवेशन करवाया था, करवा रहा था जब, तभी उग्रसेन महाराज भी पूछे थे कंस को, बोले रे पुत्र ये जेल तुझे कौन सा इतने महत्व के लगता है, इतने महत्व क्या है उसको, क्यों इतने बजट पास कर रहा है उसको रिपेयरिंग करने में। तो कंस तभी उत्तर दिया था पिताश्री को, पिताजी महाराज श्री हो सकता है आगे चलकर कोई बंदी को रखना पड़े, कोई काम में आए, मुझे पता है ना कैसे तो करना पड़ेगा, तो उसमें ठीक ठाक कर रहा हूं। तो बोले ठीक है तो करो, मुझे तो कोई लगता नहीं कोई काम करने, प्रजा कोई दूसरे उन्नयनमूलक काम न करके जेल में इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहा है। लेकिन हाई बजट पास करके कंस ने सारे दीवार को ठीक ठाक कराया और ऊंचा बढ़ा दिया था, दीवार को और ऊंचा कराया था, गेट जो बिल्कुल जीर्ण हो चुका था मेन गेट, उनको चेंज करके बड़े हाई पोटेंसी वाला गेट, बड़े मोटा चौड़ा सख्त लोहे का दरवाजा लगाया था, बड़े बड़े सिकुड़ी लगाया था, और उसके अंदर का जो होता है, अब 5000 साल पहले की बात, तभी तो ना इलेक्ट्रिसिटी होता होगा, ना अटैच बाथरूम, ना ये जो आजकल क्या पानी के सिस्टम, ये सब कुछ नहीं होता होगा ना। राजा महाराजा भले ही बाथरूम जाते होंगे, जो सिस्टम होता होगा गाँव यही से होता होगा ना, भले जंगल में नहीं जाते होंगे लोटा लेकर के, लेकिन बाथरूम अपना प्राइवेट होता होगा, लेकिन फिर भी पानी कुआं से उठाकर रखते होंगे, है ना। नहीं यही व्यवस्था होता है, यहाँ थोड़ी कोई टैप सिस्टम तो था नहीं, तभी ना इलेक्ट्रिसिटी था ना आटा जो टैप से कुछ हुआ नहीं करता था। तो इस जेल में दो तरफ से भवन था, लंबे लंबे से घर हुआ करता था, और ऐसे नाम को था एक साइड जेंट्स का एक साइड लेडीज का, लेकिन कहीं जेल तो होता ही नहीं था, किसको कभी काम नहीं आता, सैकड़ों साल से खाली पड़ा था। और एक कुआं था, और स्नानागार कहीं साइड में शौचालय अगर बना होगा, कुआं से पानी निकाल करके वहीं जा करके वहीं स्नान टान शौचालय क्रिया करना पड़ता होगा। तो कंस ने आपने बजट पास करके उस कुआं को होता ना रेनोवेट करना, सही पानी रहे उसमें, बकेट रस्सी सब खत्म हो चुका था, उसको नया लगाया था, गेट को बड़ा सख्त करके लगाया था, बाउंड्री वाल अच्छा बनाया था, ये सब करकार कर रख दिया था, लेकिन फिर भी कोई काम में नहीं आया था। लेकिन तभी महाराज भी उनको बोलते थे काहे कोई खर्चा कर रहा है, लेकिन क्या पता था तब को तभी कि स्वयं महाराज श्री एक दिन वहां बंदी होकर के इसी जेल में इतने अधिक साल तक वहीं पड़ा रहना पड़ेगा, कौन सोचा था इस बात को। लेकिन अभी शाम शाम होते हुए संध्या समय में पहले तो महाराज को इस कोठरी में डाल दिया गया। सोचने से बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या विडंबना है, उसी जेल के अभी अभी दूसरी कोठरी में सामने सामने एक रूम, दूसरी तरफ एक रूम, ये रूम में ये रूम में वो थे, कौन कौन थे ये रूम में? इस तरफ के रूम में वसुदेव और देवकी, दूसरे तरफ के रूम में उग्रसेन। सेम डे में अपॉइंटमेंट हुआ, पोस्टिंग हुआ दोनों का दूसरे रूम में। एक दूसरे को दरवाजा खोलते ही देखते हैं, लेकिन बंदी थे, आ नहीं सकते थे इधर उधर, हाई टाइट सिक्योरिटी। माता देवकी तो मूर्छिता ही थी, कभी कभी उनके सर पे हाथ रख करके वसुदेव जी बैठे थे, क्या करेंगे, धूल धसरी से कक्ष में बैठे थे, कोई सहारा नहीं, कोई नहीं। कभी उनका मूर्छा खोली, चिल्ला कर उठे, हाय मेरे लाल। वसुदेव जी ने मथा थपाने लगे, देवी काहे को सोच कर रहे हैं, आपको तो पता है आपके भ्राता श्री कैसे हैं, काहे को सोच कर रहा है बस। तो देवी देविक ने उठ करके तुरंत रोना शुरू कर दी। दोनों भुवन वंदे दंपति नहीं प्रार्थना कर रहे, हाय हाय हमारे बेटा सद्यजात पुत्र कैसे मारा गया, अब एक नहीं अभी तो और मारा जाएगा, हमारा पुत्र कैसे बच जाए, पुत्र क्यों मारा गया, हे प्रभु हमारे पुत्र मर जाएगा, मर गया मर भी जाएगा, इस प्रकार शोक कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक उनके सामने दूसरे कक्ष में और एक व्यक्ति, वो भी प्रार्थना करते रोते रोते, हाय मेरा पुत्र क्यों नहीं मर गया, क्यों जिंदा रहा है ना, नहीं एक सोच रहे मेरे पुत्र मरा क्यों नहीं। वसुदेव जी का, उग्रसेन का मन में कोई दुख नहीं था, वो भी उदास पुरुष थे, पहले से सोचते थे ठीक है मुझे वृद्ध हो गया जाना था, कुछ अटैचमेंट था नहीं उनको, जब से जेल में डाल दिया कोई प्रतिवाद नहीं, नियम ले लिए भूमि सहन का। यद्यपि कंस ने भेजा था परिचार के उपचार, उनके सेवक, सेवक स्वीकार नहीं किए, स्वयं अपना काम किए, जेल के अंदर आपने तपोवन बना डाले, घास के एक चटाई डाले, अनेक दिन तो उपवास करते थे, निर्जला व्रत रखते थे, उनके दैनदिन जीवन तो केवल आराधनामय हो गया, बस केवल नाम जप करते थे बैठ करके, और इस प्रकार सादगी जीवन जीते थे, कोई मन में कोई भावना कोई नहीं, संकट हरी इच्छा, मुझे तो इस प्रकार जीवन जंगल में जीना था, अभी जेल के अंदर जीऊं क्या बात है, वही मुझे उपासना जीवन आराधनामय अपर जीवन बना लिए। लेकिन एक दुख उनके मन में हमेशा भटक रहा था, ये दुख क्या था कि मैं एक कुपुत्र के पिता हूं, मैं एक कुपुत्र के पिता हूं, ये मेरे पुत्र हुआ क्यों, जब हुआ जन्म तो मर क्यों नहीं गया, यही रो रो उतरते रहते, मेरे पुत्र जन्म होते क्यों नहीं मर गया, और यहां पुत्र जन्म होते क्यों मर गया, पुत्र की कर्म में पिता को भी भाग लेना पड़ेगा, और ये कोई पुत्र है, ये तो पिशाच है, यही एक उनका मन में दुख था। भगवान को प्रार्थना करते थे कब समय आएगा, अब कंस उनको इसे बंद करके आ गया, इमीडिएट तो जेलर को बंद करके ही चेंज करके आ गया था, आ करके तुरंत मंत्रिमंडल इमीडिएट बुलाया, बुलाया क्या, आ करके बैठा तो ऑलरेडी उनके जो मिनिस्टर वगैरह थे वो टेक केयर कर देते थे, जहां सब मरे हुए थे ना, डेड बॉडी पड़ा हुआ था, रक्त हुआ था, राजभवन में सब सफाई का काम चालू हो गया था, म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट संभाल लिए थे उनको, और जो जो डेड बॉडी से ले लिए थे। आते ही कंस आपने बड़े बड़े मिनिस्टर के इमीडिएट इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, मीटिंग बुला करके और सबको सतर्क कर दिया, सतर्क करके और बेशरम ऐसा किया, उनको राजा बनाया कोई नहीं, कोई तिथि कोई एक होता है ना क्या राज्योत्सव अभिषेक कोई मुहूर्त कोई पूजा कुछ भी नहीं, जो उनके पिताजी अपने हाथ से मुकुट निकालकर फेंक दिए थे पड़ा हुआ था उसको स्वयं उठा के ले आया, लाकर स्वयं पहन लिया, पहन करके जाकर बैठ गया आसन में और घोषणा किया कि मैं राजा हूं, कौन का किसी का साहस है मना करे उसको, सेल्फ मेड किंग, आपने आप बन गया, बनाया नहीं गया, बन गया जबरदस्ती अपने आप, मुकुट लाकर पहन लिया स्वयं जाके बैठ के बन गया। अब उसे घोषणा किया कि मैं राजा हो गया, अब क्या करें। अब इस प्रकार जबरदस्ती आपने आप सेल्फ मेड राजा बन करके प्रथम राज्य का राजा का रो मंत्रिमंडल का मीटिंग होगा, इस मीटिंग में क्या क्या विषय रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, क्या क्या घोषणा किया जाएगा, ये आप काल सुनेंगे। हरे कृष्ण।